ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगद्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष उत्सव है हम सबके लिए, गोवर्धन पूजा। ये कार्तिक मास अपने आप में बहुत विशेष है। जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण के असंख्य गुण हैं, लेकिन उनके असंख्य गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? भक्तवत्सलता। कि भगवान भक्तवत्सल है, भगवान अपने भक्तों से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे एक गाय अपने वत्स से बछड़े के साथ। तो जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल हैं, ये कार्तिक मास ये दामोदर मास भी भक्तवत्सल है। और इस कार्तिक मास में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं रची। और भगवान की इन सुंदर सुंदर लीलाओं रचने के पीछे मुख्य अभिप्राय है, और यही भगवान के अवतार लेने का भी एक अभिप्राय है। कुंती महारानी बताती है श्रीमद् भागवतम में कि जब भगवान अवतरित होते हैं उनके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा कृष्ण कथा को स्थापित करके जाए। और जब बाद में हम इस कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, यही कथा का श्रवण कीर्तन हम सबके लिए शुद्धिकरण का मार्ग है और भगवत धाम जाने का, धर्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता क्या है? भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन। तो आज इस गोवर्धन पूजा में कुछ सीमित समय में कथा करने का प्रयास करेंगे, और ये कथा बहुत ही अद्भुत बहुत ही रोमांचकारी है, और इसके ऊपर सीमित समय में कहना लगभग असंभव है। लेकिन श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की प्रसन्नता, आप सबके दिव्य आनंद और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही कल दिवाली का उत्सव था, आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। अगर आप सबने, कितने भक्तों ने कृष्णा पुस्तक में ये गोवर्धन पूजा का चैप्टर पढ़ा हुआ है? वेरी गुड। किसी को चैप्टर नंबर याद है? हैं भक्त लोग हमारे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, याद है किसी को बाय चांस? 24th चैप्टर है। 23rd चैप्टर में क्या है? 23rd चैप्टर में कृष्ण बलराम जंगल में जाते हैं और ब्राह्मण द्विज पत्नियों का उद्धार करते हैं। तो हाँ, देखते हैं कि उसमें जो ब्राह्मण है यज्ञ कर रहे हैं कर्मकांडी, और वो कृष्ण बलराम को ज्यादा वैल्यू नहीं करते। कृष्ण ग्वाल बाल आते भी हैं उनके पास, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि कृष्ण बलराम हमसे कुछ मांग रहे हैं। इसी ढंग से कृष्ण बलराम देखते हैं कि ब्रजवासी भी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, कुछ अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण समझ जाते हैं, कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं कि गड़बड़ है, ये भी कुछ यज्ञ कर रहे हैं। तो कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन कृष्ण यहां पे आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। उनको मालूम है ये ब्रजवासी इंद्र के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद महाराज से बहुत ही मासूम होकर कृष्ण सारे सदाचार का पालन करते हुए विनीत भाव से आदर से नंद महाराज से पूछते हैं, बाबा बाबा क्या कर रहे हो, अब कोई भागदौड़ कर रहा हो, छोटा बच्चा बीच में आए, क्या कर रहे हो? बहुत इरिटेशन हो जाती है ऐसे। तो बाबा क्या कर रहे हो, ये अनुष्ठान क्या है, किसके लिए है, क्यों है, किसके निर्देशन में कर रहे हो, इतने सारे प्रश्न एक साथ है ना। शिला प्रभुपाद कहते हैं बच्चों की आदत होती है प्रश्न पूछना। एक बार शिला प्रभुपाद अपने छोटे पुत्र के साथ कहीं रात जा रहे थे मार्ग में, तो बाहर ने देखा कि सामने एक विवाह का उत्सव बारात आ रही थी। तो शिला प्रभुपाद के पुत्र ने प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा, उस समय अभय चरण उनका नाम था, कि पिताजी पिताजी ये सामने क्या है? उन्हें बोला, बेटे ये विवाह उत्सव है। ये क्या होता है? बेटे युवक और युवती का विवाह होता है। पिताजी आपका भी विवाह हुआ था? हाँ बेटे मेरा भी विवाह हुआ था। ये सुन के बेटा जोर से रोने लगा, तो क्या हो गया? बोले आपका विवाह हुआ, आपने मुझे बुलाया ही नहीं था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये बच्चों का स्वभाव है प्रश्न पूछना। लेकिन जो कृष्ण है दिखने में बच्चे हैं लेकिन प्रश्न बड़े परिपक्व। ये क्या है अनुष्ठान, किसके लिए है, क्यों है, इसका परिणाम क्या मिलेगा? अब नंद महाराज ने बोला, इतना मैं वैसे बहुत व्यस्त हूं, अब इसको क्या मैं उत्तर दूंगा। लेकिन कृष्ण के प्रश्न बहुत रेलेवेंट है। कृष्ण ये नहीं चाहते कि उनके भक्त ब्रजवासी तो परम भक्त हैं, वो फालतू के अनुष्ठानों में फंसे रहे, रीति रिवाज में, रिचुअलिज्म जिसको बोलते हैं, उसमें फंस जाए। कृष्ण ये पसंद नहीं करते। कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है वो प्रेम का संबंध है। प्रेम में कोई अनुष्ठान औपचारिकता ये नहीं, खासकर ब्रजवासियों के लिए। तो बोला ये तो नहीं होने दूंगा। इसलिए प्रश्न बड़े वैलिड थे और हम सबको भी देखना चाहिए। हम भक्ति के मार्ग में हैं, कृष्ण भाना भक्ति के मार्ग में हैं। कई बार हम भी जो साधना करते हैं धीरे धीरे करते करते वो रिचुअल बन जाता है ना, बस केवल नाम के लिए फटाफट माला, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर नीचे किया, सोया, हो गया, खत्म, रिचुअल फिनिश। प्रार्थनाएं रिचुअल, रोज वही तो प्रार्थना है। बुरा मत मानिए, कितने भक्त लोग जब महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना बोलते हैं पूरी बोल भी पाते हैं कि नहीं। और मैं तो नहीं बोल पाता पूरी, खासकर अभी इतनी भूख लगी होगी, कौन बस पूरी। और अगर बोल भी रहे हैं तो कितना ध्यान से सुनते हैं। ध्यान तो यहां होता है, कम डालो ज्यादा डालो। तो रिचुअल, तो ये जो रिचुअल जब हो जाता है तो इसको टेक्निकल भाषा में रूप गोस्वामी जी कहते हैं नियम आग्रह। नियमों का पालन करना केवल नियमों के लिए, बस उसके पीछे के उद्देश्य को ना जानना, जो कि कृष्ण पूछ रहे हैं नंद महाराज से, क्या उद्देश्य है, क्या परिणाम मिलने वाला है। तो भक्ति में हम जो भी साधना करें हमें भी बार बार ये प्रश्न पूछना चाहिए, क्या कर रहा हूं, क्या उद्देश्य है, ये माला सुबह सुबह क्यों जल्दी उठ रहा हूं कार्तिक में, ये गुरु अष्टकम क्यों गा रहा हूं, किसके लिए है, क्या परिणाम मिलेगा, ये माला है, ये श्रवण किस लिए कर रहे हैं, प्रार्थनाएं किस लिए हैं, अध्ययन किस लिए है। ये केवल औपचारिकता मन के ना रह जाए। क्या कहना आपका, जब ये सब चीजें औपचारिक बन जाती हैं तो बोझा बनती है कि ये बहुत आसानी से हो जाती है, बोझा बन जाते हैं। और हम देखते हैं पूरे वैदिक संस्कृति के पतन होने का मुख्य कारण यही है, रिचुअलिज्म। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो, रिचुअल हो गया। तो कैसे बचे रिचुअल को, हमेशा क्या याद रखें, ये रिचुअल नहीं क्या है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल और रिचुअल में क्या अंतर है, एसपीआई यानी कि शीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस। अगर रिचुअल में एसपीआई लगा देंगे, शीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस हमेशा याद रखेंगे, तो वो स्पिरिचुअल रहेगा। जब कर रहे हैं ये रिचुअल ना बन जाए। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन क्या है, लिसन लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो, केवल सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, अटेंटिव हियरिंग, इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, वो रिचुअल नहीं रहेगा। ओके, अन्यथा भक्ति धीरे धीरे ये साधना बहुत बड़ा बोझा बन जाती है और फिर हमारी रुचि खत्म हो जाती है, प्रोसेस बहुत ड्राई हो जाता है। तो कृष्ण ये नहीं चाहते। तो ब्रजवासी में ऐसा क्यों भागदौड़ कर रहे हैं, क्या है बताए तो सी। अब नंद महाराज ने सोचा क्या बताऊं, वो शांत रहे। कृष्ण ने फिर दूसरा बात करा, देखो जो बहुत, जिनका स्वभाव बहुत सरल साधु स्वभाव और जिनकी मानसिकता बहुत विकसित होती है, लिबरल होते हैं, उनके लिए कोई रहस्य की बात ही नहीं है। उनका जीवन तो खुली किताब के समान है। उनका ना कोई मित्र ना शत्रु है, रहस्य तो वो रखते हैं जिसे कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, जो द्वंद्व में फंसा हो, तो बात को रखना नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है आप कहें हम तो बड़े सरल हैं, हम ये नहीं जानते बड़ा स्वभाव क्या है, फिर भी हम तो आपके संबंधी हैं, संबंधियों से क्यों रहस्य रखते हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं अनुष्ठान, क्या परिणाम मिलेगा। अब ये जो पूछा, नंद महाराज ने देखा कृष्ण उनके सामने बैठ गए, नंद महाराज ने बड़े प्रेम से उनको अपने उठाया, गोद में बिठाया। नंद महाराज की आयु 90 वर्ष के आसपास, उनकी दाढ़ी आधी सफेद हो गई, कृष्ण छोटे से बालक 7 साल के, क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें। उनको समझाया, देखो हम लोग वैश्य हैं, हमें अन्न की आवश्यकता होती है, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव, यज्ञा भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, अन्न के लिए बारिश चाहिए, बारिश यज्ञ से होती है और अन्न बारिश के देवता इंद्र हैं, हम उन पर निर्भर हैं, और ये तो करते आए हैं, हमारी परंपरा है, इसके शास्त्रों का पता नहीं है कि नहीं, बस पीढ़ियों दर पीढ़ी चल रहा है। तो भगवान ने बोला बिल्कुल फालतू की बात है, ये तो इंद्र का क्या लेना देना बारिश से, आप इन चक्रों में फंसे हुए हैं। ऐसी बात की भगवान ने जान के ऐसे बोला कि इंद्र को गुस्सा है, किन चक्रों में फंसे, इंद्र इंद्र क्या करेगा इसमें, बारिश से इंद्र का क्या लेना देना। अरे बाबा जैसा कर्म वैसा फल, कृष्ण ने आप बड़ा नास्तिक सिद्धांत दिया, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, इंद्र कहां से आ गया बीच में, और इंद्र को तो फल देना ही पड़ेगा। अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, इंद्र के पास कोई अथॉरिटी नहीं आपको फल ना दे, इंद्र खुद कर्म बंधन से फंसा हुआ है, उसको फल देना ही पड़ेगा, वो स्वतंत्र नहीं है। क्या कहते हो ये सिद्धांत, और इस सिद्धांत को आजकल बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, यही गीता का सिद्धांत लोग बोलते हैं, है ना, अच्छे कर्म करो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये नास्तिकवाद है, इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। कृष्ण ने जानबूझकर ये नास्तिकवाद का सिद्धांत दिया नंद महाराज को, ताकि वो अपना असली उद्देश्य पूरा कर सके। असली उद्देश्य क्या स्थापित करने आए थे, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे आप ब्रजवासी हो, राग मार्ग में मेरी भक्ति कर रहे हो, ये क्या देवी देवताओं की भक्ति में पड़ोगे, जिसने मेरी शरण ले ली है उसको किसी देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं, रंच माथ भी कोई डरने की बात नहीं है, मां शुचा। और जिसने मेरी शरण नहीं ली उसके लिए देवी देवताओं की उपासना करना अनिवार्य है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, फ्री में तो नहीं मिल रही, वापस तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे प्रेम करते ही हो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले ये सिद्धांत सब बेकार है, इंद्र की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ समुद्र कौन सा यज्ञ करता है, समुद्र में भी बारिश हो रही है, आप किन चक्र में पड़े, बंद करो इंद्र का यज्ञ, बड़े भी बड़े क्या करे। बोले हम लोग गायों की रक्षा करते हैं, गायों के लिए जो असली घास है ये गोवर्धन दे रहा है, इसकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, इंद्र का क्या लेना देना। नंद महाराज ने बोला ठीक है बेटा ऐसा करेंगे, अब ये सब तैयारी तो हो गई है, इंद्र का यज्ञ कर लेते हैं फिर बाद में गोवर्धन के लिए भी कर लेंगे। नहीं 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 बाबा, वो बाद में बात टल जाएगी, ये जो यज्ञ है अभी इसी यज्ञ को इंद्र यज्ञ से गोवर्धन यज्ञ में कन्वर्ट कर दो बस। आप देखिए ब्रजवासी इतने सरल होते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेने को वो तैयार हो गए। नंद महाराज ने सब ब्रजवासियों से बोला बेटा ठीक है यार, बच्चा है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बस, यही उनका ब्रजवासियों का एकमात्र हृदय में यही इच्छा है, कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहते हैं। बोले इसकी इच्छा तो कर देते हैं, इतना बड़ा रिस्क आप सोचिए, वैश्य गण है वो, उनको मालूम अगर इंद्र रुष्ट हो गए, बारिश नहीं हुई, कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, नहीं, और छोटा बच्चा कह रहा है, नहीं कृष्ण कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं वो जानते हैं कृष्ण परम भगवान है, इसलिए बात मानने सेफ ही है, इसमें सब देवताओं के यही तो कारण है, नहीं नहीं बस कृष्ण से प्रेम है तो मान गए। अच्छा बेटा करना क्या है, क्योंकि हमने तो कभी किसी पर्वत की पूजा की नहीं, पर्वत की पूजा पहली बार ही आप बता रहे हो तो इसलिए भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे वृंदावन में, तो कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा के वो फाउंडर है चाह रहे हैं। कृष्ण ने बोला कि अब मैं बताता हूं इस पर्वत की पूजा कैसे करनी है। बोले ऐसा करो, घर में जो कुछ है, जो अनाज है, जो दाल है, जो दूध है, जो घी है, ले आओ और बनाओ सुंदर सुंदर व्यंजन, चावल पूरी परांठे चपाती सब्जी दाल पकोड़ा समोसा मट्ठी कचौड़ी और पिज्जा मैक्रोनी पास्ता और क्या लड्डू रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, रसमलाई, संदेश, केक और जलेबी, इमरती इत्यादि इत्यादि सब ले आओ, बनाओ और हम फिर क्या करेंगे, गोवर्धन को इसको भोग लगाएंगे और सब गायों को सुंदर सुंदर आभूषण डालो और नए नए वस्त्र डाल के ब्राह्मणों को बुलाओ, संगीतकारों को बुलाओ और यज्ञ करो और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ। सब राजवासी जैसे जैसे आदेश से तुरंत करते गए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुति डाली, सारे के सारे मंत्रों का उच्चारण हो गया, सारे के सारे ब्रजवासी ने अपने आप को सुंदर सुंदर आभूषणों से सजा लिया और गायों को भी आभूषणों से सजा के, ये थी वैदिक संस्कृति, गायों को भी स्वर्णों के आभूषण डाले जाते थे, आजकल तो इससे बेचारी नकली गायों को भी सजाया जाता था स्वर्णों से एकदम, और गायों को सामने रखा और सारी के सारी गोपियां बैलगाड़ी में बैठ गई कृष्ण का गुणगान करने के लिए। और ये गोवर्धन पूजन एक ऐसा उत्सव है जिसमें पूरा का पूरा व्रज एक साथ भाग ले रहा है, सभी रसों के भक्त एक साथ, तो सारे के सारे आगे चल पड़े और ये बहुत सुंदर अवसर था। इस समय कृष्ण की आयु है 7 वर्ष, तो आचार्य गण बताते हैं कि अभी कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ नहीं की और ये जो कृष्ण की आयु थी, इस आयु को प्रेम के संबंध में बोलते हैं पूर्व राग। पूर्व राग का अर्थ है प्रेमी और प्रेमिका अभी मिले नहीं है, मिलने से पहले का राग, पूर्व राग, मिलने से पहले का राग तो गोपियों के अंदर भी है और कृष्ण के अंदर भी। और जो युवक युवती गोपियां थी वो उनको बहुत संकोच रहता था कि कैसे सबके सामने कृष्ण को देखें, लेकिन अब तो सबके साथ हैं तो वो भी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण भी उनको देख रहे हैं। और कई बार भीड़ में ऐसा हो जाता था कि कृष्ण उनकी दृष्टि से दूर हो जाते थे, तो कृष्ण क्या करते थे, अपने बछड़ों को गायों को आगे भेज देते थे और फिर उनको बुलाने के लिए जाते थे और फिर गोपियों को अपने दर्शन देते थे और गोपियां भी उनको देखती थी। इस ढंग से बहुत सुंदर से प्रेम का आदान प्रदान हो रहा था और उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और उसके बाद हुआ अन्नकूट उत्सव। ये जो गोवर्धन की परिक्रमा है इसका बहुत महत्व है। ये परिक्रमा हम जब लगाते हैं तो परिक्रमा एक तरीका है भक्तों भक्त लोग अपने हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो प्रदर्शित करने के लिए। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में सनातन गोस्वामी पर वो बहुत वृद्ध अवस्था में भी हो गए थे तब भी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। जब इतने वृद्ध हो गए तो कृष्ण के सामने प्रकट हुए, बोले अब ये मत करो आप वृद्ध हो चुके हो, तो सनातन गोस्वामी पाद ने बोला नहीं ये मेरी सेवा है, लेकिन कृष्ण से अपने भक्तों का कष्ट कैसे देखा जाए। तो कृष्ण ने स्वयं एक गोवर्धन शिला ली और उसके ऊपर खड़े हुए, बोले ये गोवर्धन से अभिन्न है। और जब कृष्ण उस गोवर्धन शिला के ऊपर खड़े हुए तो भावावेश में आके वो गोवर्धन शिला पिघल गई, है ना, तो कृष्ण के ऊपर उसके चरणों के चिन्ह बन गए। आज भी वो शिला हम देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में। तो कृष्ण ने सनातन गोस्वामी जी को बोला कि अगर आप इस शिला के ही 4 बारी परिक्रमा कर लोगे तो मैं उसको पूरी गोवर्धन परिक्रमा के समान मानूंगा। कहने का अर्थ है कि हमें गोवर्धन परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। हमें कितने भक्तों ने एक बारी कम से कम परिक्रमा लगाई है गोवर्धन जी के, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं लगाई अभी कार्तिक का मास है, समय निकाल के जरूर लगाएं। शिला प्रभुपाद जब अपने अंत्यलीला में थे 1970 में तो गोवर्धन पूजा आने वाली थी। समझ लीजिए आज 12 नवंबर है, 15 नवंबर को शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, उसी ढंग से 10 नवंबर को उसमें गोवर्धन पूजा थी 1977 में। और प्रभुपाद को बहुत उत्साह आ गया, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला मैं परिक्रमा पे जाऊंगा। प्रभुपाद की ऐसी स्थिति थी सब लोग हैरान हो गए। प्रभुपाद ने कहा मुझे पालकी में बैठा के ले जाना, तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य बोले क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ा सा भी हिले 5 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। भक्तों बड़े परेशान, प्रभुपाद के पास भी ऐसा नहीं करना। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा मुझे बैलगाड़ी में बैठा के ले जाओ, बैलगाड़ी में बैठाओ आगे कीर्तन करते हुए चलाएंगे। ये देखिए प्रभुपाद का उत्साह। भक्तों ने बोला नहीं वैद्य कह रहे हैं आपकी मृत्यु हो जाएगी। प्रभुपाद ने मृत्यु मृत्यु तो वैसे ही आनी है, मैं तो रण क्षेत्र में मरना चाहता हूं लेकिन मैं जाना चाहता हूं। अब भक्तों के बीच में डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं जब प्रभुपाद ये इच्छा है तो पूरी करनी चाहिए, कुछ भक्त कह रहे हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत वाद विवाद होने लगा। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि प्रभुपाद के सामने जाए, ना उनको मना कर सकते हैं क्योंकि गुरु है, उनको कितना उनको मना करेंगे। फिर सबने सोचा कि प्रभुपाद के जो गुरु भाई हैं अकिंचन कृष्ण दास बाबा जी महाराज, उनके पास गए कि आप ही प्रभुपाद को समझाइए। तो अकिंचन कृष्ण दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने बताया कि आप कृपया करके बच जाइए, भक्तों को कष्ट होगा। फिर प्रभुपाद ने बोला ठीक है, आप सबको कष्ट होता तो मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद फिर भक्त लोग प्रभुपाद जी की मूर्ति को लेकर गए और वहां पर पूरा परिक्रमा कराया था। तो ये गोवर्धन परिक्रमा का बहुत महत्व है। तो जब ब्रजाश्रम ने सब परिक्रमा कर ली तो फिर मनाया गया कौन सा उत्सव, अन्नकूट का उत्सव। तो अन्नकूट के उत्सव में जो भी ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर भोग मनाए थे उसके समान ये पूरे पूरे पहाड़ बन गए, जैसे यहां भी पहाड़ बनाया गया छोटा सा। और जो उन्होंने लिक्विड तरल पदार्थ बनाए थे उसकी पूरी पूरी झील बन गई। और उन्होंने वहां एक गोवर्धन जी हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। कृष्ण ने सोचा इतने सालों से ये इंद्र की पूजा करते आए हैं, इंद्र के साथ कुछ आदान प्रदान तो हुआ नहीं, अब इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, इनको कुछ दिखाते हैं चमत्कार, इनको लगे हाँ गोवर्धन की इन्होंने पूजा की है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए, गिरिराज के रूप में, और बहुत विशाल रूप धारण कर लिया, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ा बड़ा मुख, और घोषणा कर दी, हे ब्रजवासियों सुनो, मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों भुजाओं से जो भी भोग था सबका सब ले लिया और सीधा अंदर। और यही नहीं, अंदर करने के बाद भगवान क्या कह रहे हैं, अनयोर अनयोर, गिव मी मोर, और लाओ और लाओ। अब ब्रजवासी क्या करें, अपने घर में जाके सारा सामान तो पहले ले आए थे, जो कुछ बचा खुचा सब लाए। भगवान फिर कह रहे हैं अन्य और खा रहे हैं, भगवान एक बार खाना शुरू कर दें तो बस, तो लिए जा रहे हैं। तो भगवान ऐसा क्यों खा रहे हैं, भगवान किस चीज के भूखे हैं, प्रेम के। तो ब्रजवासियों ने अपने प्रेम और भक्ति से जो प्रदान किया भगवान ने तुरंत उसको स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जब सारा का सारा भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया तो ब्रजवासी परेशान इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं क्या लेके आए। तो फिर भगवान ने उनको बोला तुलसी रखी है ना, जब तुलसी का दल डाला तो फिर कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। तुलसी महारानी की प्रसंग से भगवान ने तुलसी की महिमा को स्थापित किया। और इसके बाद एक और चमत्कार हुआ, आप भी सोच रहे होंगे सारा तो भगवान ने खा लिया हमारे लिए क्या बचेगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि तुरंत जो वो भोग था प्रसाद के रूप में वापिस से प्रकट हो गया। खुशी नहीं हुई आपको? तुरंत प्रकट हो गया है ना। महाराज बता रहे थे कि अगर प्रतिदिन हम भोग लगाए भगवान को, ऐसे गौ निताई को भोग लगाते हैं और गौ निताई पूरी थाली खा जाए, अगली बार हम भोग लगाएंगे नहीं। बहुत महंगे पड़ रहे हैं भगवान, ये तो भगवान की विशेष कृपा है, भगवान दूर से आंखों से, हाँ भगवान आंखों से खा लो ज्यादा अच्छे। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि भगवान ने पाया और फिर दोबारा वैसे के वैसा प्रकट हो गया। और फिर कृष्ण ने निर्देश दिया कि जो प्रसाद है सबको बांटा जाए, ब्राह्मणों को खिलाया जाए, उनको दक्षिणा दी जाए, और साथ में जो भी व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए, यहां तक कि जो चंडाल है वो भी पाए, कुत्ते और बिल्लियों को भी मिलना चाहिए, सबको बांटा जाए। एक बारी मायापुर में भी इसी ढंग से अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा था, जब उत्सव समाप्त हो गया हजारों भक्त उसमें आए, तो भक्तों ने पाके अपनी जो प्लेट थी झूठी फेंक दी और प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स में चले गए। तभी प्रभुपाद को अपने रूम में आवाज आती है जोर जोर से लड़ाई झगड़े की। तो प्रभुपाद बाहर आके देखते हैं तो नीचे देखते हैं कि जो यो पत्थर पड़े थे उसके आसपास भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ कुत्ते हैं, और गांव के बच्चे कुत्तों को हटा रहे हैं ताकि कुत्ते वहां से हटे और वो जो पत्थर में कुछ जो प्रसाद बचा है वो उसको खा सके। और कुत्ते भी प्रयास कर रहे हैं नहीं हम ये प्रसाद खाएं, वो भोंक रहे हैं और बच्चे उनको हटा रहे हैं। जब ये दृश्य प्रभुपाद जी ने देखा प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने तुरंत जयप्रदा का स्वामी महाराज को बुलाया और कहा ये जो मंदिर है ये भगवान का घर है और भगवान के घर से कभी भी उनकी संतान भूखी वापस नहीं जानी चाहिए। तो आज से आप ये इंश्योर करें कि हमारे हर मंदिर में कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ये प्रभुपाद जी का आदेश है कि एक तो मंदिर में आने वाला कोई भक्त बिना प्रसाद दिए ना जाए, भूखा नहीं जाना चाहिए, और दूसरा 10 मील के रेडियस में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं सुबह और शाम इस्कॉन के हर मंदिर में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो खूब प्रसाद बांटा गया और सब लोग बहुत आनंद में, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, कौन? इंद्र। तो इंद्र बताया जाता है गर्ग संहिता में कि नारद मुनि इंद्र के पास गए थे और नारद मुनि ने बोला भैया आप यहां स्वर्गलोक में बैठे आपको मालूम है क्या हो रहा है नीचे? बोले क्या हो रहा है? बोले इस बार कोई यज्ञ नहीं हो रहा आपके नाम का, वो कृष्ण है उसने सारा ब्रेन वॉश कर दिया सबका, कुछ नहीं आने वाला आपके हाथ में। नारद मुनि ने उनको चुपचाप खबर देके चल पड़े। नारद मुनि जी का ये रोल रहता है ना, बहुत सुंदर रोल है भगवान की कथाओं में कुछ मसाला डालने का, और उसको एक्सपेडाइट करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, जल्दी हो काम, है ना। इंद्र को गुस्सा नहीं आया अभी तक, जल्दी हो, है ना। तो ये मालूम चला इंद्र ने बोला ऐसी हिम्मत और एक छोटा सा ये गांव का छोरा, इसके कहने पे सब ब्रजवासियों ने यज्ञ रोक दिया, अभी इनको मजा चपाता हूं। तुरंत इंद्र को इतना क्रोध आया उसने समर्थक बादलों को बुलाया। समर्थक बादल वो बादल है जो कि संहार के समय, डिस्ट्रक्शन के समय, प्रलय के समय आते हैं काम। तो समर्थक बादल को वैसे बंद करके रखा जाता है, इंद्र ने उनको खोल दिया, आओ इमरजेंसी सेवा। समर्थक बादल ने बोला कि अभी तो 7वां मनमंत्र चल रहा है, प्रलय तो 14वें मनमंत्र में आनी है, अभी तो ब्रह्मा जी का आधा दिन भी नहीं हुआ, अभी क्यों? बोले है इमरजेंसी, चलो ये अभी पूरे ब्रह्मांड का अपना संहार नहीं करना, एक छोटा सा काम है, छोटे से लड़का है, इसको खत्म कर दो, फिनिश हम जाओ। तो बोले एक छोटा सा काम है तो अभी करके आए, बोले जल्दी जाओ, एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए, एक गाय भी नहीं बचनी चाहिए, और तुम जाओ पीछे पीछे मैं आ रहा हूं अपने वज्रपात के साथ, देखता हूं कैसे बचते हैं। इंद्र में इतना क्रोध है ना, इंद्र सोच रहे हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए यज्ञ ना करके। और भगवान चाहते थे, भगवान देख रहे थे कि इंद्र का अहंकार बढ़ा हुआ है। कई बार हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवा में हमें कुछ पावर पोस्ट मिलती है, और जब पोस्ट पोजीशन मिलती है, और खासकर इस कौन संस्था में तो एक नया नया भक्त आता है, दूसरे दिन उसको आगे नाम लगाते हैं इंचार्ज, वो सेवा का इंचार्ज बन जाता है सीधा। तो कई बार इंचार्ज होता है तो पावर भी आती है ना, ये करो ये ना करो वो करो, और मैनेजमेंट का अपना कुछ नशा होता है, तो इंद्र को भी नशा चढ़ा हुआ था। इंद्र को ये गलत फहमी हो गई थी कि मैं ही सब कारणों का कारण हूं, है ना, भगवान को भूल गए बिल्कुल। तो होता है करता हम इतनी मान्यते, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान ये नहीं दे सकते इनके भक्तों के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए, भक्ति में थोड़ा सा अहंकार यानी कि मीठी खीर में अपने रेत डाल दे ना, सारा स्वाद खराब। तो भगवान बोले यार खीर में रेत मत डालो, आपकी सेवा में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जिनका अहंकार बड़ा हुआ है, भगवान को क्या है अहंकार, अभी तोड़ देंगे। तो बोले इंद्र को गुस्सा दिलाया इसका अहंकार, इसको अपनी पोजीशन दिखानी है। तो इंद्र ने सारे समर्थक बादल बरस पड़े। जब समर्थक बादल बरसते हैं तो उनकी बताया जाता है एक बूंद एक खंभे के समान होती है। इंग्लिश में कहावत है ना, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट वॉज रेनिंग लाइक एलिफेंट्स। समझ लो कि हाथी बरस रहे ऊपर से। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी ना, कुछ ओले पड़े थे, 6-7 महीने पहले शायद हुआ था, कुछ ओले याद आता है, तो काफी नुकसान हुआ था, काफी घरों की छतें टूट गई थी। तो ऐसी जबरदस्त बारिश और साथ में खूब जोर से तूफान, जोर जोर से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, पूरा अंधकार आ गया, और समर्थक बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जोर जोर से बारिश हो रही है, सारे के सारे ब्रजवासी परेशान और समझ गए ये इंद्र नाराज हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सीधा भाग के कृष्ण को पुकारा, कृष्णा कृष्णा। आप भूखे हैं मालूम है, लेकिन भूख से कराह के बोलिए भगवान को, कृष्णा कृष्णा
कृष्णा।
सबके सब भगवान के पास गए। मैं सोचा था अगर मैं स्थिति में होता तो सबसे पहले भगवान को गालियां देता, भैया आपके कहने में मैंने यज्ञ बंद किया, अब जिम्मेवारी कौन लेगा बताओ ना। बड़े है, बहुत हीरो बन रहे थे आप, बहुत स्मार्ट बन रहे थे, नंद महाराज को पकड़ के सब पिटाई करते, भाई आपको अधिकार ही नहीं है ब्रज का राजा बनने के लिए, क्या इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया, ये क्या हो गया ये। और कृष्ण को ऐसे की तरह क्या बुरी हालत करवा दी, क्या पंगा ले लिया एक नया। नहीं, ये भक्तों के लक्षण है, उन्होंने बिल्कुल भी कृष्ण पे कोई नाराजगी नहीं, कोई आरोप नहीं, केवल कृष्ण को प्रेम से पुकारा, उनकी शरण ली। तो ब्रजवासी हमें सिखाते हैं भक्ति के जीवन करते हुए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कष्ट जरूर आएंगे, हमारे ऊपर समर्थक बाधा तो अभी तक नहीं बरसे हैं, लेकिन थोड़े बहुत कष्ट तो आते ही हैं। कभी भी हम भगवान पे आरोप ना लगाएं, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या रक्षा करते हो आप, सब कहने की बातें हैं, बस ऐसे ही है, कुछ होता नहीं आपकी भक्ति में, कोई रक्षा नहीं करते आप, है ना। नहीं, ये समय होता है जब हम भगवान को अपना समर्पण दिखाएं, भगवान यही टेस्ट करते हैं अब क्या करेगा ये। और ऐसे समय में जितना हृदय से हम पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है हम भटक जाते हैं, अक्सर लोग माला छोड़ देते हैं, माला को ध्यानपूर्वक नहीं करते, मंदिर आना बंद कर देते हैं, कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई हेल्थ खराब हो गई, कोई धोखा हो गया, कुछ ये हो गया, बोले सब भक्ति में ऐसे ही है। नहीं, ये वो समय है जब पूर्ण रूप से हम कृष्ण के शरण में, ब्रजवासियों को रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के मार्ग में हमेशा याद रखना चाहिए, हृदय में छाप लें, एकदम बोल लगा दें कि कृष्ण सब कारणों के कारण हैं और कृष्ण मेरे परम हितेशी हैं, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, बस। तो फिर क्या डर, जो सब कारणों के कारण मुझसे प्रेम करते हैं तो जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो ब्रजवासियों को पूरा विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा ही करेंगे। His Holiness भक्ति चारु स्वामी महाराज एक उदाहरण देते एक लेक्चर में कि कृष्ण अपने भक्तों के साथ कैसे खेलते हैं, हम तो कृष्ण के संतान के समान है। तो जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को उठाता है और हवा में फेंकता है, और जब बच्चा छोटा बच्चा हवा में जाता है और नीचे आता है, किलकारियां मरते हुए नीचे आता है, कि ये अपने एक्सपीरियंस कितने पिताजी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा लगता है। ये एक लीला है, बच्चे को लेते हैं, जो बच्चा खासकर 3-4 या 5 साल का, उसको उठा के फेंकते हैं और बच्चा भी नीचे आता है और हंसते हुए नीचे आता है, पिताजी पकड़ लेते हैं और उठाते हैं और जोर से फेंकते हैं और फिर और जोर से हंसते हुए नीचे आता है। तो बच्चे को पूरा विश्वास है कि पिताजी नीचे पकड़ने के लिए हैं, तभी वो किलकारियां हंसते हुए आ रहा है ना। अगर उसको मानकर ऊपर फेंक दिया बाद में पिताजी ऐसे कर ले होगा नहीं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, जायंट व्हील पे चढ़ते हैं ना, दिवाली फेट होता है जायंट व्हील में, कितनी फीट ऊपर होता है वो, 70-80 फीट होता है, इतनी स्पीड से ऊपर जाता है, और जब नीचे आता है कैसा लगता है, हम सब देखते हैं ना, लगता है अभी कुछ हुआ। तो ये सब लोग हंस रहे होते हैं जोर जोर से, पूरा विश्वास है फिर ठीक हो जाएगा, कोई बाहर निकलने में गिरने वाला नहीं हो, ये बंदा एक्सपर्ट है जो चला रहा है ना। तो यहां पूरा विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे, तो जितना मर्जी ऊपर उछालो, जितनी मर्जी उल्टी पुल्टी कर दो, हम घबराएंगे नहीं। तो ब्रजवासियों को पूरा विश्वास था, रक्षा से तिथि विश्वास हो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान कह रहे हैं मां शोचा मुझसे डरा मत करो। तो ब्रजवासियों ने कृष्ण की शरण ली, कृष्ण समझ गए ठीक है गेम शुरू हो गया, बोले चलो कृष्ण के पीछे पीछे सब। अब जब कृष्ण चल रहे थे, कृष्ण के ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी। अरे माया दक्षिण प्रकृति खड़ा रुक जाओ, तुम चाहे समर्थक हो कुछ हो शड़प वहीं रहो, एक बूंद भी पानी की भगवान के ऊपर नहीं। अब भगवान जा रहे हैं सीधा गोवर्धन के पास और सारे ब्रजवासी पीछे पीछे। और गोवर्धन के पास जाके बड़े प्रेम से भगवान झुके, गोवर्धन को अपने बाहिने हाथ की छोटी उंगली में सबके सामने उठा लिया। सारे के सारे ब्रजवासी अचंभित, ये क्या क्या लड़का है, छोटा सा बालक, 7 वर्ष का बालक। आप सोचिए, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा लगने वाला, कृष्ण की त्वचा इतनी सॉफ्ट होती है, जैसे कभी कानपुर जी बताते हैं आनंद नमन चंपू में, जैसे दूध को उबालते उसकी झाग होती है, हाथ में नहीं आएगी, इतना सॉफ्ट। और ये क्या कर दिया इसने, क्या यूं उठा लिया भाई हाथ की उंगली पे यूं, और सब देखते रह गए, बड़े देख क्या रहे, अंदर आओ, अंदर। सबको बुला लिया और सबके सब आ गए। ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की हो रही है, बहुत रश हो रहा है, बदबू आ रही है, परेशान हो रहे हैं। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को छुआ, गोवर्धन के अंदर रोमांच आ गया, वो गोवर्धन ने अपने आप को विस्तारित कर लिया, इतना विस्तार कर लिया, सारे के सारे ब्रजवासी, सारे के सारे ग्वाल बाल, गोपियां, गायें, बछड़े, सब सब के सब अंदर। बहुत सुंदर एक बताया गया, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे उठाया गोवर्धन को जैसे एक मशरूम को उठाया, उठाया मशरूम कभी तोड़ के, कुछ में नहीं उठाया और सबके सब अंदर फर्स्ट क्लास। और ये तो एक उत्सव हो गया। और उधर इंद्र लगे बड़े समर्थक बरस रहे हैं, इंद्र बोला मारो करो तेरे ऐरावत के ऊपर बैठ के। लेकिन जहां गोवर्धन रोमांचित हो रहा है, उस तो फैला तो ऐसे आकार में फैला, हाइट में भी ऊपर बढ़ गया, इतनी ऊपर हाइट में बढ़ गए कि समर्थकों को भी क्रॉस कर दिया। और उस पूरे गोवर्धन के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है, और सुदर्शन चक्र में इतना तेज 1000 सूर्यों के समान, पानी की बूंद गिरने से पहले सूख जाती है, इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज वर्षा, एक बूंद भी गोवर्धन के ऊपर नहीं गिर रही और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। और उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर सारे के सारे पशु चढ़ गए, शेर तक के, और समर्थक को देखकर जोर जोर से कहने लगे। समर्थन बोला क्या हो रहा, अभी तक तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, अभी भी आप देखेंगे शेर पड़े वहां पर हो ना जाके दर्शन करना बाद में। तो बड़ी विचित्र मेला, और गोवर्धन के अंदर तो पूरा नेत्र उत्सव हो रहा है। ये गोवर्धन ऐसी लीला है जिसमें भगवान के सभी रसों के भक्त एक साथ एकत्रित, और क्या सब कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण उनको देख रहे हैं। इन सारे भक्तों में यशोदा माता को बड़ी चिंता थी, बोले एक छोटा सा बच्चा है, दिन में 4 बारी मुझसे मैं इसको खिलाना पड़ता है, बार बार इसको भूख लग जाती है, इतना बड़ा पर्वत इसने उठाया हुआ है, ये थक जाएगा। अरे कृष्ण क्यों पंगा ले लिया तुमने, है कभी तुम गोपियों को चुनौती देते हो, कभी असुरों को चुनौती देते हो, अब देवताओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया, एक सीधे साधे बच्चे क्यों नहीं रहते, रोज कुछ ना कुछ अपवाद मचाते रहते हो, और देखो अब थक गए हो गए तुम। साथ में खड़े थे मधु मंगल, बोले नहीं नहीं थका नहीं, ये जो उसने उठाया हुआ है ये तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे तेज से इसने उठाया हुआ है। कृष्ण बोले मां चिंता मत करो, ये मैंने नहीं उठाया हुआ, ये जो पर्वत है ना ये अपने आप में बड़ा रहस्यमय है, ये अपने आप आके बैठ गया ऊपर। फिर भी यशोदा माता संतुष्ट नहीं थी, बोले तेरी इतनी पत्नी पत्नी सी बाजुएं हैं इसकी, कहां ये सपा उठा पाएगा, अच्छा कुछ तो खा लो। कृष्ण ने एक हाथ से यूं किया है, दूसरे हाथ से बंसरी पकड़ी हुई है, तो बोले कुछ खाने को भी नहीं। भगवान कहते ठीक, फिर भी माता को, मां को हमेशा अपना बेटा लगता कि कमजोरी हो रहा है तो बोले क्या है, परेशान हो जाएगा। सुबल को बोला सुबल ये तंबुल है, तंबुल इसके मुंह में डाल के आ, कुछ तो शक्ति मिलेगी। तो सुबल जाते हैं, उनके हाथ से बांसुरी हटाते हैं और उसके मुंह में तंबुल डालते हैं भगवान के मुंह में। और जब भगवान के पूरे होठों को मैया लाल देखती है तो उनको संतुष्टि आ गई, चलो कुछ तो खाया इसने। और भगवान साथ साथ में बांसुरी बजा रहे हैं, मधुमंगल बोलते हैं भैया बांसुरी बंद करो। बोले क्यों, बोले तुम्हारी बांसुरी भी अजीब सी है, जो जड़ होता है वो चेतन हो जाता है, चेतन होता है वो जड़ हो जाता है ना, गायें दूध पीना बंद कर देती हैं, यमुना बहना बंद कर देती है, वृक्ष झुक जाते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, आज तुम्हारी बांसुरी सुनकर ये पर्वत पिघल गया तो क्या होगा। तुम बांसुरी बंद करो। और जितने भी जाग ग्वाल बाल थे, सब गोपियां थी, सबको ऐसा लगा था भगवान उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ये एक ऐसा अवसर था जो सब भगवान एक साथ, सारे ब्रजवासी कभी कृष्ण के साथ एक साथ नहीं हो पाते थे। जब भगवान गाय चराने जाते थे तो गोपियों को बहुत चिंता होती थी, भगवान वन में जा रहे हैं क्या होगा, और प्रतीक्षा करती थी कब सायकाल होगा भगवान वापिस आएंगे। और जब भगवान रात को सो जाते थे तो ग्वाल बालों से अलग हो जाते थे, और जो युवती गोपियां थी वो सबके सामने आके कृष्ण को देख नहीं पाती थी। लेकिन अब तो ऐसा है कि सबको भगवान अपना रस प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। देखिए ये जो गोवर्धन लीला सबके लिए पूरा उत्सव, और 7 दिन तक किसी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना कुछ सोए। ये है भक्ति का बल। तो 7 दिन तक जब उत्सव चलता रहा, ये रस का आदान प्रदान हुआ। तुम्हारे आचार्य मन बताते हैं कि रस के मुख्यतः 2 अंग हैं। अगर हमें जीवन में रस चाहिए, कितने भक्तों को रस चाहिए? रस चाहिए ना, रस मतलब भक्ति, असली रस। और बिना रस के तो जीवन नीरस है, और इस नीरसता के कारण ही हम संसार में रस ढूंढते हैं। संसारिक रस और आध्यात्मिक रस में अंतर वैसा ही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक गन्ने के अंदर और बांस के अंदर। बांस भी गन्ने जैसा लगता है, अगर लेकिन बांस को चूसने का प्रयास करें तो क्या होगा? लेकिन गन्ने को चूसेंगे तो रस मिलेगा। तो अगर हमें भक्ति के मार्ग में रस चाहिए तो उस रस के 2 भाग बताए गए हैं। पहला है अद्भुतता, एस्टॉनिशमेंट। भक्ति के मार्ग में कुछ हमें अद्भुत लगना चाहिए। हाँ ये अद्भुत है, तभी तो रस, हाँ देखो कितनी नई चीज है, वाह क्या हो रहा है। और दूसरा एब्जॉर्प्शन, तल्लीनता। क्योंकि मन को क्या चाहिए? तल्लीनता। तल्लीन नहीं होंगे और कुछ आश्चर्यजनक नजर नहीं आएगा तो रस नहीं आएगा। कोई एक चीज है, हाँ हाँ मुझे मालूम है क्या है, हाँ हाँ मुझे मालूम है क्या होने वाला, रस खत्म। और उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है तो उसमें कोई तल्लीनता भी नहीं होगी। नहीं, कृष्ण तो बिल्कुल हर बार ही नए हैं, नए हैं, नए हमेशा ही नए हैं, तो हमेशा ही आश्चर्य। अब एक कम आश्चर्य की बात है, यूं उठाए हो है एक छोटी सी उंगली पर, और तल्लीनता। हर किसी को लग रहा है कृष्ण मुझे देख रहे हैं, और हर किसी के साथ आदान प्रदान हो रहा है। तो इसलिए पूरे 7 दिन कैसे निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। और हम भी अपना अनुभव कर सकते हैं, जब हम कभी भी ऐसी कोई सेवा में लगे होते हैं और उसमें नए नए हमें आश्चर्य हम कैसे देख सकते हैं भक्ति के मार्ग में। अगर भक्ति के हर एक कदम पर भगवान और भक्तों की कृपा को देखेंगे तो कृपा का अपना मात्र मतलब है अद्भुतता, आश्चर्य। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे ये हो गया। अगर हम सोचेंगे कि मैं करता हूं फिर कोई आश्चर्य नहीं है, अगर सोचेंगे मैं तो इसके योग्य नहीं हूं फिर भी हो गया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे वाह, आज सुबह जल्दी उठ गया, कमाल की बात है। भगवान के सामने प्रणाम करें मंगल आते हैं, वहां भगवान बहुत धन्यवाद टाइम से पहुंच गया आपके सामने। आप सोचिए ये हैरानी की बात है कि हम सुबह उठ जाते हैं, हमें नहीं नहीं हमें तो आदत पड़ गई है, इंद्रियों पूरा संयम है, कभी भी सुलाओ हम उठ जाएंगे। नहीं, हम अपनी आंखें भी झपकते हैं, इसके पीछे भी कृष्ण का नियंत्रण है। जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है वो बेचारा एक हाथ एक उंगली भी नहीं हिला पाते, हम इसको ग्रांटेड ले रहे हैं। सब कुछ भगवान की कृपा से। अगर हम आदत डालें, आदत डालने की बात है कि हर कदम पे भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करें तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। कितना आश्चर्य है, देखो आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि कभी आप गोवर्धन पूजा के उत्सव को इस तरह मनाएंगे। कहीं में से आप लोगों ने कुछ पाया ही नहीं होगा अब तक, सुबह से 2 बजे तक भूखे पेट और सुन रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। कितने लोगों ने सोचा था कि वो धोती कुर्ता डाल के तिलक लगा के सड़क में नाचा करेंगे, आश्चर्य की बात है कि नहीं? 16 माला का जप, वो 2 घंटे माला कैसे कर लेते हैं, आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य कैसे? कृपा, कृपा से संभव है। तो आश्चर्य निश्चित से, और जब सेवा करें कृपा पर निर्भर रह के और सेवा में पूरा हृदय डालेंगे तो निश्चित रूप से रस मिलेगा। जैसे अभी भगवद गीता मैराथन आने वाली है, इसीलिए जब मैराथन में भाग लेते हैं भक्त लोग खाना पीना सब भूल जाते हैं। है अनुभव किसी का? कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? जब मैराथन में पूरा एब्जॉर्व होते हैं सेवा में, या किसी सेवा में भाग लेते हैं, जन्माष्टमी की सेवा होती है, फिर प्रभुपाद उत्सव आता है, लगातार भक्त लोग जो पुजारी लोग हैं तीन तीन रात सोते ही नहीं, क्यों? सेवा में पूरे मग्न हैं। तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ढंग से 7 दिन तक कोई सोया नहीं, किसी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं। इसके बाद इंद्र को लगा कुछ गड़बड़ है, ये बालक कोई साधारण नहीं है, और इंद्र ने अपनी पावर विड्रॉ की और उसने बोला ये कृष्ण ये स्वयं साक्षात स्वयं भगवान है। और फिर इंद्र ने कृष्ण की शरण ग्रहण की, उनकी उपासना की। तो ये जो इवेंट है, आप ये अमदार 5 मिनट माइंड अप कर देंगे, जो इवेंट है हम देखते गोवर्धन पूजा आज के दिन हुई, उसके बाद कल बनाया गया भैया दूज का उत्सव। भैया दूज के उत्सव में यमुना जी अपने भाई यमराज का तिलक करते हैं। इसी ढंग से उपानंद की जो पुत्री थी सुनंदा, उन्होंने कृष्ण और बलराम को तिलक किया था और बहुत बड़ी फीस्ट भी हुई थी। उसके बाद 3rd दिन से ये वर्षा शुरू होती है ना। आज पहला दिन, कल अमावस्या थी, अमावस्या के बाद ये पहला दिन, कल दूसरा दिन, द्वितीय, तृतीय से नवमी तक ये 7 दिन खूब वर्षा होती है। और 10वें दिन इंद्र आते हैं सुरभि के साथ, कृष्ण की उपासना करते हैं। 11वें दिन एकादशी होती है ना। तो अगर डेट वाइज चलेंगे तो आज क्या है 12 नवंबर, तो कल भैया जो 13, 14 से लेकर 19-20 तक वर्षा चलेगी, समर तक बांध लोगे। और 21 को क्या होगा, भगवान का अभिषेक होगा सूर्य गाएंगे जरा, और 22 को एकादशी, और 23 को नंद महाराज स्नान करने जाएंगे यमुना में और वरुण जी उनको पकड़ लेंगे। तो ये इस दिन का इवेंट है ऐसे पूरा। और इस गोवर्धन लीला से हमें सीखते हैं कि किस ढंग से हम कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे। और आज इस ढंग से गोवर्धन की बहुत महिमा है। समय हो गया, आपको हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराएंगे, सारे आइटम्स गिनवाए थे आपको, कुछ बचे हैं ऐसे आपके लिए, बचे हैं, पूरा बचे हैं। और भगवान ने कहा कि हर किसी को गोवर्धन पूजा में भाग लेना चाहिए, जो गोवर्धन पूजा में भाग नहीं लेगा वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो गोवर्धन पूजा में भाग नहीं लेगा, गोवर्धन के ऊपर रहने वाले सांप उसको डस लेंगे। तो हमेशा कोई डर नहीं है, यहां पे जो सांप रखे हुए हैं ऊपर, लेकिन वो नकली है। तो इसलिए हम गोवर्धन से प्रार्थना करें आज। गोवर्धन साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और साथ साथ गोवर्धन को बताया गया हरिदास वार्य, भगवान के जितने सेवक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सब दासों में सर्वश्रेष्ठ किस लिए, कैसे, क्योंकि ये कौन सी सेवा करते हैं, ग्वाल बालों की सेवा करते हैं उनको सुंदर सुगंधित जल देके, और गायों की सेवा करते हैं उनको सुंदर घरी घास देके। क्योंकि ये ग्वाल बालों और गायों की सेवा करते हैं, दासों के दास हैं, और दासों के दास मन के कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हरिदास वर्य, यानी कि सभी भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ। तो गोवर्धन ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, स्वयं साक्षात कृष्ण भी है और साथ में भगवान के सर्वोत्तम भक्त भी है। तो हम गोवर्धन जी से प्रार्थना करें आज कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रहना सीख सकें, और जो सेवा का भाव गोवर्धन का है, सब दासों का दास बनने का, वो भाव हम अपने जीवन में अनुकूल कर सकें। सभी प्रजवासियों से प्रार्थना करें, शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करें। शिला प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने पूछा कि मुझे किस ब्रजवासी के का अनुगमन करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने उसको डांट के बोला, रास्कल, आई एम दैट ब्रजवासी, मैं वो ब्रजवासी हूं, मेरे पद चिन्हों पर चलो। तो प्रभुपाद असली ब्रजवासी हैं जो गोवर्धन के महिमा और वृंदावन की महिमा को उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया। तो हमारा भी यही कर्तव्य है प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलने। आज कितने कम लोग गोवर्धन ब्रज की महिमा को जानते हैं, पूरे विश्व में प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया, आज पूरे विश्व में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की कार्तिक मास की उदय गोर प्रेमानंदे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।